आज है 21 अक्टूबर दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा इस्लामिक स्टेट कर सकता है आम नागरिकों को मानव कवच के तौर पर इस्तेमाल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 को लेकर आरएसएस से जुड़े संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने दिए प्रस्ताव।
प्राथमिक शिक्षा तक सारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, हिंदी हो, उसे हासिल ही होगा, देश की भाषाओं का विकास होगा।
विवेचना में आज जानेंगे भारतीय राजनीति में तेज तर्रार सांसदों में गिने जाने वाले भूपेश गुप्ता के बारे में।
संसद वो पैदल ही जाते थे, कुर्ता, धोती, चप्पल और एक जवाहर बास्केट, वो भी एक तरह से लटका चिमड़ा मुचड़ा हुआ। आजकल के जो राजनीतिज्ञ हैं एकदम कुर्ता पजामा स्वच्छ, एकदम टन छोड़।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, तृप्ति श्रीवास्तव से। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने उत्तरी इराक में एक जवाबी हमले की मुहिम शुरू की है, जिसमें किरकुक शहर के आसपास कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक आईएस ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, जिसमें 6 पुलिस अधिकारी मारे गए और 13 कर्मचारियों की मौत हो गई। 13 आईएस के चरमपंथियों के मारे जाने की भी खबर है। लड़ाई अब भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट मोसुल के आसपास के गांवों से 500 परिवारों को मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ले गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार अधिकारियों का कहना है कि सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी अलेप्पो में सुरक्षा कारणों के चलते घायलों को निकालने का काम शुरू भी नहीं हो पाया है। गुरुवार को रूस के अस्थायी संघर्ष विराम के बाद संयुक्त राष्ट्र इसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन साथ ही यहां सुरक्षा की कोई गारंटी भी नहीं दी गई है। सीरियाई सरकार का कहना है कि उनकी बसें और एम्बुलेंस तैयार हैं, लेकिन विद्रोही मानवीय सहायता पहुंचाने वाले रास्तों पर हमला कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति ने एलेप्पो के संकट को लेकर जिनेवा में आपात सत्र बुलाया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति ने एलेप्पो के संकट को लेकर जिनेवा में आपात सत्र के दौरान वरिष्ठ अधिकारी जैद राद अल हुसैन ने पूर्वी एलेप्पो में घेराबंदी और बमबारी को ऐतिहासिक अपराध बताया है। मेरे कर्मचारियों ने दस्तावेज तैयार किए हैं, जिसमें एलेप्पो में सभी दलों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के उल्लंघन की बात है। हथियारबंद विपक्षी गुट लगातार मोर्टार और अन्य हथियारों से पश्चिमी एलेप्पो के नागरिकों को आसपास के इलाकों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन सरकारी सेना और उनके सहयोगी पूर्वी एलेप्पो में अंधाधुंध हवाई हमले कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा नागरिकों की मौत के जिम्मेदार हैं। ये उल्लंघन युद्ध अपराध है, और अगर नागरिकों पर ये हमले जानबूझकर और रणनीति के तहत किए जा रहे हैं तो ये मानवता के खिलाफ है। ये थे जैद राद अल हुसैन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत यानी आईसीसी से अलग हो रहा है। न्याय मंत्री माइकल मसूथा ने फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि आईसीसी के नियम वर्तमान नेताओं को राजनयिक छूट देने के दक्षिण अफ्रीका के कानून के साथ असंगत हैं। उनका कहना है कि इसके चलते उनका क्षेत्रीय शांति दूत का काम बाधित हुआ है। पिछले साल दक्षिण अफ्रीका को तब आलोचना झेलनी पड़ी थी जब सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर जोहान्सबर्ग आए थे। आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीका से उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे, जिसकी दक्षिण अफ्रीका ने अवहेलना की थी। पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी नहीं है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। सीधा चलते हैं भारत प्रशासित कश्मीर, जहां से खबर आ रही है कि कठुआ में फायरिंग हुई है और बीएसएफ ने कहा है कि पाकिस्तानी रेंजर के कुछ लोग मारे गए हैं। श्रीनगर से हमारे साथ रियाज मसरूर जुड़ चुके हैं। रियाज, क्या जानकारी है?
जी, मेरी बात हुई है राकेश कुमार से, जो इंस्पेक्टर जनरल हैं बीएसएफ के। उनका कहना है कि आज सुबह पाकिस्तान ने कई बीएसएफ के ठिकानों को निशाना बनाकर हेवी फायरिंग की, जिसमें एक बीएसएफ का जवान बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन बीएसएफ का कहना है कि जवाबी फायरिंग में उनको जो सूचना मिली है वो ये है कि पाकिस्तानी रेंजर्स के 8 कर्मचारी जो हैं वो मार दिए गए हैं, और इस फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की भी एक कोशिश बताई बीएसएफ ने। उसमें एक मिलिटेंट जो है, एक चरमपंथी मारा गया और उसका साथी घायल है।
तो भारत की तरफ से क्या जवाब दिया गया है?
भारत की तरफ से तो जवाबी कार्रवाई हुई है, उसी में तो पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं, ऐसा बीएसएफ का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान में जो आईएसपीआर है आर्मी के प्रवक्ता, तो उनका कहना है कि फायरिंग तो हुई है लेकिन उसमें लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर हम कहते हैं यहाँ पे भारत में, तो उसको पाकिस्तान वर्किंग बाउंड्री कहता है। वो 193 किलोमीटर लंबा सीमावर्ती क्षेत्र है जो कठुआ और उसके बाद पंजाब का थोड़ा सा क्षेत्र है, और उसके उस पार जो है वो शकरगढ़ सेक्टर पड़ता है। तो इसमें आज सुबह से ही रुक रुक कर गोलीबारी की खबरें आ रही थी, तो आज शाम को बीएसएफ ने ये स्पष्ट कर लिया कि जवाबी कार्रवाई में जो है 8 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए। मैंने बीएसएफ के आईजी से ये भी बात की, मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला कि बीएसएफ के 8 रेंजर्स मारे गए, तो उन्होंने बताया कि उन्हें जो इंटरसेप्ट्स मिले हैं वायरलेस इंटरसेप्ट्स, उनसे पता चला है कि 8 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए।
जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्रीनगर से रियाज मसरूर। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की ओर से कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट मौसूल के आसपास के गांवों से 500 से ज़्यादा परिवारों को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए शहर की तरफ ले जा रहा है। इस्लामिक स्टेट का ये कदम मौसूल शहर को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के लिए इराकी सेना के अभियान में मुश्किल खड़ी कर सकता है। वहीं कार्यालय की प्रवक्ता ने कहा है कि उन रिपोर्टों की भी जाँच की जा रही है जिसमें एक ही गाँव के 40 आम नागरिकों की आईएस द्वारा मौत की खबरें आई थी। पूरे ब्यौरे के साथ रोहित जोशी।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की एक प्रवक्ता रवीना शमदासनी ने बताया है कि इस्लामिक स्टेट ने मौसूल शहर के आसपास के ग्रामीणों को मानव ढाल बनाकर शहर की तरफ लाना शुरू कर दिया है। इसमें ग्रामीणों के तकरीबन 500 से अधिक परिवार शामिल हैं। रवीना शमदासनी ने यह भी बताया है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय उन रिपोर्टों की भी जाँच कर रहा है जिसमें कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने एक गाँव में 40 ग्रामीणों को मार डाला है। उधर इराकी सेना के एक कमांडर ने भी बीबीसी से बात करते हुए कहा है कि जब सेना ने मौसूल के रास्ते पर पड़ने वाले बशमाना गांव में प्रवेश किया तो वह बिल्कुल खाली था। उनका कहना था कि गांव वालों को इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी अपने साथ बंधक बनाकर ले गए हैं। 2014 में मौसूल शहर पर इस्लामिक स्टेट के कब्जे के बाद से भागने पर मजबूर हुए समुदायों में ईसाई समुदाय भी शामिल है। शरणार्थी शिविरों में रह रहे ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही इराकी सेना मौसूल शहर से इस्लामिक स्टेट को पीछे धकेल लेगी वे अपने घरों में दोबारा जा सकेंगे। इरबिल के पास बनाए गए एक शरणार्थी शिविर में रह रही ईसाई महिला इंतजार माते कहती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही अपने घर में वापस होंगी। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही अपने घरों में वापस लौट पाएंगे। यहाँ हमें अच्छा नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ फंस गए हैं। अपने घर जैसा कुछ और नहीं होता। हमारे बच्चे भी आपस में बातें करते हुए घर लौटने की ही बात कहते हैं। शरणार्थी शिविर में रह रही इंतजार माते के शब्द। उधर उत्तरी इराक के शहर किरकुक में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने शहर के भीतरी और बाहरी इलाकों में कई हमले किए हैं। स्थानीय मेयर ने बताया है कि शहर के उत्तर पश्चिम की ओर 40 किलोमीटर दूर एक पावर प्लांट में हुए हमले में 16 लोग मारे गए हैं। किरकुक शहर के भीतर हुए हमलों में इस्लामिक स्टेट ने सरकारी परिसरों, पुलिस हेडक्वार्टर और कुछ दूसरी इमारतों को निशाना बनाया है। इस बीच इस्लामिक स्टेट के भी कम से कम 4 चरमपंथियों के मारे जाने की खबर है। शहर में अब भी गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इधर भू राजनीतिक मामलों की जानकारी जुटाने वाली एजेंसी स्टेटफॉर की ओर से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। इनमें एक तस्वीर में मौसूल जाने वाली सड़क हाईवे 2 पर टायर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेटफॉर के मुताबिक चरमपंथियों ने हाईवे 2 में अस्थायी रुकावटें पैदा कर दी हैं ताकि गाड़ियां वहां से आगे न जा सकें।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने आशंका जताई कि इस्लामिक स्टेट गांव वालों को सुरक्षा कवच के तौर पर कर सकता है इस्तेमाल। ये थे रोहित जोशी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के लिए देश भर से आए सुझावों में से एक के मुताबिक स्कूलों में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई को बंद कर देना चाहिए और स्नातकोत्तर स्तर पर शोध के लिए राष्ट्रहित में जुड़े विषयों को ही चुना जाना चाहिए। ये सुझाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से भेजे गए हैं। भारत की पहली शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी जिसमें 1992 में बदलाव किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 में भारत के स्कूल, कॉलेज कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई किस भाषा में हो और किन विषयों पर हो, ऐसे कई मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्या ने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के भाषा सलाहकार नाहर सिंह वर्मा से इस बारे में और जानकारी मांगी।
तो उसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि प्राथमिक शिक्षा तक नर्सरी केजी से लेकर के सारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, हिंदी हो, भारतीय भाषाएं हो, प्रादेशिक या किसी प्रदेश की जो भाषा है उसी माध्यम से पढ़ाई होनी चाहिए, अंग्रेजी कहीं माध्यम ना हो। तो मातृभाषा का अर्थ ये नहीं है कि मान लो 1600 भाषाएं हैं इस देश में तो 1600 भाषाओं में पढ़ाई की जाएगी। जो 22 मान्य भारतीय भाषाएं हैं संविधान की अनुसूची 8 में, उनके माध्यम से पढ़ाने की बात की जा सकती है।
और अंग्रेजी की पढ़ाई है वो छठी कक्षा से शुरू,
छठी से पढ़ाने की ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था की जा सकती है, हमें कोई राय नहीं है, लेकिन अनिवार्य विषय नहीं होना है। विदेशी भाषाओं के बारे में पढ़ाई जाए तो कॉलेज स्तर पर पढ़ाई जाए, ये सुझाव है। कोई विदेशी भाषा हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, जर्मनी भी हो सकती है। अंग्रेजी चूंकि लोगों का विशेष लगाव है इसलिए ऐच्छिक विषय के रूप में छठवें से पढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं।
प्रादेशिक राज्य भाषाओं में पढ़ाई का जो आपका प्रस्ताव है उससे हासिल क्या होगा?
उससे हासिल ये होगा कि देश की भाषाओं का विकास होगा, हमारे देश में सौहार्द बढ़ेगा, प्रांतीयता की खत्म होकर के राष्ट्रीयता की भावना आएगी। तो यह कि धीरे धीरे अंग्रेजी को हटा करके भारतीय केंद्र में हिंदी और प्रांतों में प्रादेशिक भाषाओं को कामकाज की भाषा बनाना है।
कुछ लोगों का ये मानना है कि अंग्रेजी की जो जानकारी है उससे नौकरियां और जो पढ़ने के भी और व्यापार के भी जो आयाम है वो बढ़ जाते हैं, तो क्या ये उस तक उसे रोकेगा नहीं?
जो 2-3% लोग अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं या सारी सत्ता पे काबिज हैं उनके बच्चे वो लोग ही इसका हिमायत करते हैं। कठिनाई तो ये है कि अंग्रेजी न देश की भाषा है, न राजभाषा है, न 22वीं भाषाओं में 8वीं अनुसूची जो 22 भाषा सामने उनमें नाम है, लेकिन सारा शासन अंग्रेजी कर रही है, या अवैधता है।
पर वर्मा जी एक चीज और जानना चाहूंगी, हमारे देश में 22 भाषाएं हैं और ये भी एक सत्य है कि दक्षिण से जो लोग हैं या जो उत्तर पूर्व से हैं जब वो भारत के और जगहों पे जाते हैं काम के लिए या शिक्षा के लिए तो अंग्रेजी ही वो भाषा है जो सभी प्रदेशों में एक बांधने का काम करती है।
आपसे निवेदन करूंगी ये सिर्फ कोरा भ्रम है। आप देखिए आज भारत की बोलचाल की भाषा हिंदी संपर्क भाषा बन चुकी है, अंग्रेजी नहीं है।
पर हिंदी तो सिर्फ उत्तर और उत्तर पश्चिम में बोली जाती
है। सारे देश में तमिलनाडु से के गुवाहाटी से के पूर्वोत्तर अरुणाचल में गया हूँ, बरसों में गया हूँ, वहाँ अरुणाचल वाले तो हिंदी पे गर्व करते हैं, नागालैंड में भी कोई दिक्कत नहीं है।
स्कूली शिक्षा के अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा है उसके लिए भी कुछ प्रस्ताव आप लोगों ने दिए?
बिल्कुल दिया है हमने प्रस्ताव, और प्रस्ताव ये दिया है कि उच्च शिक्षा इंजीनियरिंग मेडिकल MBA सारी शिक्षा का माध्यम हिंदी और भारतीय भाषाओं को बनाया जाए अंग्रेजी के साथ साथ।
ये थे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में भाषा सलाहकार नाहर सिंह वर्मा, इनसे बात करी थी दिव्या आर्य।
बीबीसी इंडिया बोल।
चीन के सामान पर भारत में घमासान, योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि चीन पर नियंत्रण के लिए बंद हो चीनी सामान की खरीद। कांग्रेस, स्वदेशी जागरण मंच और दूसरे संगठन भी बॉयकॉट के पक्ष में, सोशल मीडिया पर भी चलाई जा रही है मुहिम। क्या भारत में चीनी सामान का बॉयकॉट मुमकिन है? अपनी राय जाहिर कीजिए बीबीसी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 22 अक्टूबर शाम 7:30 बजे मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
BCCI एक तरफ जहां जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशों को पूरी तरह मानने से मना कर रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट अब से अधिक छूट देने के लिए तैयार नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BCCI और कितना समय चाहती है और वह राष्ट्रीय राज्य क्रिकेट संघों से जुड़े सभी लेन देन भी बंद करे। एक रिपोर्ट के साथ आदेश कुमार गुप्त।
पिछले काफी समय से सुप्रीम कोर्ट BCCI को लगातार कह रहा है कि वो अपने संगठन में सुधार को लेकर जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करे, लेकिन BCCI कोई ना कोई नया बहाना बनाकर इन सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने में आनाकानी कर रहा है। इसे देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा कदम उठाते हुए BCCI और राज्य क्रिकेट संघों के बीच पैसे के सारे लेन देन रोक दिए और BCCI को निर्देश भी दिया कि वो अगर जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू नहीं करता तो वो किसी भी तरह अपने पैसे को बांट नहीं सकता, यहाँ तक कि मैच के आयोजन के लिए भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के सुप्रीम कोर्ट और लोढ़ा समिति के सामने हलफनामा पेश करें कि सुधारों को लागू करने में कितना समय लगेगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के सभी खातों की जाँच के लिए स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने को भी कहा है। तो क्या बीसीसीआई की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं? इसे लेकर क्रिकेट समीक्षक प्रदीप मैगजीन कहते हैं,
देखिए सबसे अहम मुद्दा यह है कि ऑर्डर में क्या जो ऑडिटर उन्होंने बिठाएंगे, क्या वो बीसीसीआई के सारे अकाउंट्स चेक करेगा कि सिर्फ अकाउंट्स जो एसोसिएशन को है फ्रीज करने के लिए है? अगर तो वो सारे अकाउंट्स बीसीसीआई के और स्टेट एसोसिएशन को चेक करेगा तब तो बीसीसीआई की मुसीबतें बहुत बढ़ जाएगी।
ये थी आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट। और अब समय है विवेचना का। जब भारतीय संसद के सबसे काबिल और तेज तर्रार सांसदों की चर्चा होती है तो उसमें भूपेश गुप्ता का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। वो 1952 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 29 वर्षों तक उस सदन के सदस्य रहे। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके वाक चातुर्य और किसी भी मुद्दे पर सदन और सरकार को झकझोर देने की क्षमता का सम्मान करते थे। उनकी 102वीं जयंती पर उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रसंगों को याद कर रहे हैं रिहान फजल आज की विवेचना में।
60 और 70 के दशक में भारतीय संसद में हिरेन मुखर्जी, नाथपाई, ज्योतिर्मय बसु और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जिस वक्ता की सबसे ज्यादा धाक होती थी वो थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भूपेश गुप्त। एक बार मशहूर थिएटर आलोचक केनेथ टिनन ने कहा था, अंग्रेज कंजूसों की तरह लफ्जों की जमाखोरी करते हैं जबकि आयरिश एक शराबी की तरह उन्हें बाहर निकाल फेंकते हैं। भूपेश गुप्त ने अपने जीवन में कभी शराब नहीं पी लेकिन राज्यसभा में जब भी वो बोलने के लिए खड़े हुए उनके मुंह से लफ्ज एक आयरिश मैन की तरह ही निकले। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान की पहली मुलाकात भूपेश गुप्त से तब हुई जब वो सिर्फ 16-17 साल के हुआ करते थे।
मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के एक प्रदर्शन में दिल्ली आया 1972 में, बहुत कम उम्र का होगा। तब मैंने उस प्रदर्शन में जो बोट क्लब पे प्रदर्शन था उसमें भूपेश गुप्ता को बोलते हुए सुना। वहां मैंने सुना मधुलिमयी जी को, वहां मैंने सुना श्रीपाद अमृत डांगे जी को, वहां मैंने सुना नाथपाई जी को। मैं प्रभावित हुआ लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ उस सिंह गर्जना को जिसको सुनने से हृदय में, शरीर में, रोम में कंपन होता था। भूपेश गुप्ता, क्या शब्द का उच्चारण! कोई वो तो अंग्रेजी जानता नहीं था लेकिन लगता था कि कुछ हमारी बात कह रहे हैं। मैं उठ करके जब वो जाने लगे तो उनके पास जाके खड़ा हो गया, बातचीत किया, हाथ मिलाया उनसे। उन्होंने देखा, अंग्रेजी में पूछा कहाँ से, हमका यूपी से, लखनऊ से। ये पहला मेरा एनकाउंटर था उसे।
जब भूपेश बोलते थे तो सभापति तक के बूते की बात नहीं होती थी कि वो उनके भाषण में व्यवधान डालें या उनसे कहें योर टाइम इज अप मिस्टर भूपेश गुप्ता। सुमित चक्रवर्ती मेनस्ट्रीम पत्रिका के संपादक और जाने माने पत्रकार निखिल चक्रवर्ती के बेटे हैं। उन्होंने अपने बचपन से भूपेश गुप्त को बहुत नजदीक से देखा है।
वो होमवर्क तो करते थे बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स लेकर, लेकिन फैक्ट्स फिगर लेने से ऐसा देने से बहुत स्टेल हो जाता। उसके साथ बहुत कुछ जुड़कर वो बनाते थे। एक सवाल पूछने के समय बहुत बोल रहे थे तो चेयर से बोला किसी ने कि आप यू कम टू द पॉइंट। तो कहा सर आई कैनॉट कम टू द पॉइंट, आई एम ट्राइंग टू मेक ए गार्लैंड। तो गार्लैंड ऐसा कहा कि एक माला बन गए तो एक फूल के साथ दूसरे फूल ये जुड़ने का हम काम कर रहा हूँ तो इसमें तो समय लगेगा ही। और एक दिलचस्प बात है, इंदिरा जी ने कहा, वो कहा भूपेश गुप्ता इज ए फेनोमेनन। तो कहा देखिए भूपेश गुप्ता को आप गैर से देखे थे, वो जब अपने स्पीच खत्म करते उसके बाद वो हियरिंग एड खोल लेते थे ताकि उनके दूसरे ये एक दफे नेहरू बोल रहे थे तो बहुत कुछ जो जिसको भूपेश गुप्ता मानते नहीं थे वो खुल लिया। तो नेहरू ने कहा मोस्ट ऑफ अस आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस प्रिविलेज ऑफ नॉट लिसनिंग टू व्हाट वी डोंट वांट टू लिसन व्हिच द ऑनरेबल मेंबर हैज।
भूपेश गुप्त एक कान से ऊंचा सुनते थे और अक्सर जब वो किसी अप्रिय बहस को नहीं सुनना चाहते थे तो अपने ईयरफोन निकाल देते थे। हिरणमय कार्लेकर हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रह चुके हैं। उन्होंने भूपेश गुप्त के राजनीतिक जीवन को बहुत नजदीक से देखा है।
एक तो है उनके साथ अगर आप बात करना चाहते हैं तो बहुत जोर आवाज उठा के बात करना पड़ता है, क्योंकि कान में सुनते कम और वो यंत्र व्यवहार करके उनको सुनना पड़ता। दूसरा, बहुत खुला आदमी था, जो मन में आता बूम बता देते। तीन, कंट्रोवर्शियल बात करने में उनको बहुत मज़ा आता, एक बात करके छोड़ दिया, उसके बाद मज़ा देखते उसका नतीजा क्या हुआ, और जिसका टारगेट करके छोड़ा वो एकदम नाजुक बन जाता, क्योंकि वो ऐसा बात नहीं करते थे। जब किसी को कुछ कहते थे तो सोच विचार करके ऐसे बात जिसको कुछ असर होगा वो छोड़ते थे, और सेंस ऑफ ह्यूमर तो काफ़ी था।
संसद में वो जो कुछ भी बोलते थे उसकी वो बाकायदा तैयारी करते थे।
फिरोजशाह रोड पे जब वो रहते थे तो मैं वहाँ जाता था, मुझे कई बार उनके साथ रात वहीं रहने का, मैं लखनऊ से आता था अपना सामान वामान बैग रख दिया तो वहीं रहता था, वहीं खाता था। साधारण प्रवृत्ति के आदमी थे, संसद वो पैदल ही जाते थे, कुर्ता धोती चप्पल और एक जवाहर बास्केट, वो भी एक तरह से लटका चिमड़ा मुचड़ा हुआ। आजकल के जो राजनीतिज्ञ हैं इसका मतलब कि एकदम कुर्ता पजामा स्वच्छ तीनों पाल लगा हो, एकदम टंच हो, कलफ से माड़ी से कड़कड़ाता हुआ हो, नहीं। गाड़ी पर नहीं चलते थे, पार्टी की एक पुरानी एम्बेसडर थी उससे कभी चले आते थे या चले जाते थे, वरना पैदल संसद में। तब तो संसद सदस्यों के लिए बस की भी व्यवस्था नहीं थी जब वो संसद सदस्य बने थे पहली बार। आज तो अच्छी बस एयर कंडीशन, उस पर भी लोग नहीं जाते हैं। आज तो भारतीय संसद के दरवाजे पर खड़े हो जाइए तो कौन सी नई कार निकली है ये उसका ज्ञान आपको हो जाएगा कि इस देश के अंदर धन से पर्याप्त ओतप्रोत इतने सांसद हैं।
मेन स्ट्रीम के पूर्व संपादक निखिल चक्रवर्ती भूपेश गुप्त को उनके लंदन के दिनों से जानते थे। उनकी मौत के बाद उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था,
भूपेश संसदीय बहस के लिए बहुत तैयारी करते थे, उनकी मेज कागजों से भरी होती थी, वो अपने निजी सचिव खुद थे, उनका कमरा हमेशा बेतरतीब रहता था लेकिन वो मेज हमेशा साफ सुथरी होती थी जिस पर वो काम करते थे। संसद में ध्यान आकर्षित करने के कई तरीके हुआ करते थे। एक था राजनारायण स्टाइल, जहां आप मस्खरा बनकर ध्यान खींचते थे, और दूसरा था संजय गांधी स्टाइल, जहां आप ताकत और स्वर के जोर पर अपनी बात मनवाते थे। भूपेश को इसलिए सुना जाता था क्योंकि वो हमेशा बेइंसाफी और असमानता के खिलाफ आवाज उठाते थे।
भूपेश गुप्त की अकेली संपत्ति उनकी किताबें थी। उनके पास बहुत कम कपड़े होते थे, अगर कोई उन्हें कोई कपड़ा भी देता तो वो उसे किसी जरूरतमंद को दे देते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता मोहित सेन उनके बहुत करीबी थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा द ट्रैवलर एंड द रोड में लिखा है।
जब वो मरे तो उनके बैंक अकाउंट में बहुत कम पैसे थे, उनके पास किताबें नोटबुक्स और बहुत मामूली वार्डरोब के अलावा और कुछ नहीं था। मुझे वो बहुत पसंद करते थे और अक्सर हम उनके फिरोज शाह रोड वाले घर से बंगाली मार्केट पैदल जाया करते थे, जहां वो गोलगप्पे और मिठाइयां खाते थे। 30 के दशक से ही वो इंदिरा गांधी से बहुत जुड़े हुए थे और उनके और फिरोज गांधी के बीच संदेश वाहक का काम करते थे, लेकिन 1977 के बाद वो उनके सख्त खिलाफ हो गए थे, हालांकि उन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया था। उसके बाद वो उनसे निजी तौर पर कभी नहीं मिले।
भूपेश गुप्त और इंदिरा गांधी की दोस्ती के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इंदिरा गांधी, उनके होने वाले पति फिरोज गांधी और भूपेश गुप्त तीनों ब्रिटेन से एक ही पानी के जहाज से वापस भारत लौटे थे। इंदिरा गांधी की नजदीकी दोस्त पुपुल जयकर ने उन पर लिखी जीवनी में लिखा है,
जब इंदिरा गांधी फिरोज से शादी करने के मुद्दे पर अपने पिता को नहीं मना पाई तो वो और फिरोज कम्युनिस्ट नेता और अपने बहुत अच्छे दोस्त भूपेश गुप्ता के पास गए। जब भूपेश ने यह सुना तो वो फिरोज की तरफ मुड़कर बहुत गंभीरता से बोले, क्या तुम वफादार रह पाओगे? फिरोज जोर से हंसे और घुटनों के बल बैठकर बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं वफादारी का प्रण लूं? भूपेश गुप्ता ने फिरोज गांधी को जवाब नहीं दिया बल्कि इंदिरा गांधी की तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम वास्तव में फिरोज से शादी करना चाहती हो? उनको पता था कि इंदिरा जिद्दी हैं और उन्हें कोई ताज्जुब नहीं हुआ जब उन्होंने कहा कि वो फिरोज से शादी करना चाहती हैं। भूपेश ने तब दोनों से कहा कि वो महात्मा गांधी से सलाह लें।
इंदिरा गांधी से इतनी नजदीकी होने के बावजूद जब उन पर राजनीतिक हमलों की बात आती थी, भूपेश गुप्त कभी पीछे नहीं हटते थे।
इंदिरा गांधी के साथ उनके संबंध नीतियों के सवाल पर बहुत कठोर होते थे, कई अवसरों पर उनके साथ होते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ऑक्सफोर्ड के अध्ययन काल में कुछ बहुत जीवंतता थी दोनों के बीच में, बहुत निकटता थी। मैंने अपनी सामने एक घटना देखी थी, फिरोजशाह रोड पे वो रहते थे, मैं रात में उन्हीं के यहाँ रुका था, सुबह 11 बजे तक उन्होंने सुबह न्यू एज का एडिटोरियल लिखा और लिख करके बैठे हुए थे अखबार में, फिर वो पार्लियामेंट में कोई संसदीय समिति की बैठक हो रही होगी उसमें जा रहे थे, सब चाहते थे पार्लियामेंट में कि भूपेश उनकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बने। मैं उनके साथ जा रहा था फिरोजशाह रोड से पार्लियामेंट की तरफ, आगे गाड़ियों के तीन गाड़ियां चार गाड़ियां, उस समय ये काफिले नहीं चलते थे, ये मंत्रियों को प्रधानमंत्री के साथ काफिला और आगे पीछे सड़क खाली करा दो, सिटी बजा दो, रास्ते पर पुलिस लगा दो और जैमर साथ में चल रहे हैं। आतंकवाद के बाद से सब घटनाएं घटने लगी हैं। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा जी थी जा रही थी, एकदम से गाड़ी रुकी और शीशा उतार करके भूपेश भूपेश कोई बोल रहा था महीन आवाज से, हाँ गाड़ी रुक गई, देखा इंदिरा जी चेहरा उनका मुझे लगा, मैं पहचान गया कि इंदिरा गांधी है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला उन्होंने और वो भूपेश को कहा आओ भूपेश, भूपेश नहीं नहीं नहीं, नहीं जाओ, फिर वो उतरी, फिर मैंने देखा कि वो उनको पकड़ रही है, उनका नहीं नहीं, मैंने वो भी देखा, तब मुझे कुछ लगा कि ये एक सिर्फ अद्वितीय सांसद और देश के प्रधानमंत्री के बीच का मामला, ये बहुत गहरा आत्मीय संबंध है।
भूपेश गुप्त ने 1975 में लगाए गए आपातकाल का समर्थन किया, लेकिन बाद में उन्हें अपने इस फैसले पर पश्चाताप भी हुआ।
उस वक्त उन्होंने पार्टी लाइन ली, जैसा था कि इमरजेंसी को सपोर्ट करना है, उसके खिलाफ वो नहीं गए। मेरे पिताजी तो पहले दिन से इमरजेंसी के खिलाफ थे और लिखते भी थे। वो एक बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा हाँ जो लिख रहे हो बहुत अच्छा लिखा हो, ये सही बात है जो कुछ कर रहे हो। तो मेरे पिताजी ने पूछा अगर आप समझते हो कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है तो आप क्यों नहीं लिख रहे हो। तो उन्होंने कहा ये लिखिए, आप लिखते जाओ, मैं तो आई एम बाउंड बाई पार्टी डिसिप्लिन, मैं लिख नहीं सकता हूँ। इमरजेंसी के समय में ये था, लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी लाइन चेंज किया, उस वक्त भूपेश गुप्ता उन्होंने कहा ये जो मेरा उंगली, इससे हमने वो साइन किया था इमरजेंसी सपोर्ट करने का, मुझे लगता है ये उंगली में काट दू, इतने ये हो गए।
जब 1980 में अचानक इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया, घोर राजनीतिक विरोधी होते हुए भी भूपेश गुप्त ने संजय गांधी को जिस तरह की भावभीनी श्रद्धांजलि दी, वैसी शायद किसी ने भी नहीं दी। भूपेश गुप्त बोले,
कई मौके होते हैं जब नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। अगर नियमों को ताक पर नहीं रखा गया होता तो 23 जून को हुई दुर्घटना न हुई होती, जिसने देश के प्रधानमंत्री के बेटे, सत्ताधारी पार्टी के महासचिव और 25 सालों तक मेरे दोस्त रहे फिरोज गांधी के छोटे बेटे, और अगर मुझ पर चापलूसी का इल्जाम न लगाया जाए तो मेरी दोस्त इंदिरा गांधी के भी बेटे के प्राण ले लिए। मैं बहुत भरे दिल से ये सब कह रहा हूँ।
1981 में जब भूपेश गुप्त का निधन हुआ और उनके पार्थिव शरीर को अजय भवन लाया गया, तो इंदिरा गांधी स्वयं उन्हें श्रद्धांजलि देने कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय पहुंची। उस समय अतुल अंजान भी अजय भवन में मौजूद थे।
उन दिनों मुझे याद है कि मेरी आंख में लाल आंख चढ़ गई थी मेरी, तो मैं काला चश्मा पहन के पीछे खड़ा था, वो तस्वीर है अभी भी। और जब मैं देखा कि एक इंदिरा जी के आने की बात हुई, पुलिस सब ये सब लग गया सब, तो इंदिरा जी आई थी और श्वेत परिधान में थी, एकदम सफेद, और आंख में काला चश्मा लगाई थी। और जब वो भूपेश की जी की पार्थिव शरीर के पास आई तो बड़ी देर तक खड़ी रही, और खड़े रहते हुए फिर उन्होंने वो चक्कर लगाया, और चक्कर लगा के जब भूपेश जी के वो कैस्केट पे रखा हुआ था शीशे के पास जिसमें उनका मुंह पूरा दिखाई दे, तो वहां गई तो बड़ी देर तक पूरी गर्दन लंबी सी निकाल कर भूपेश जी के चेहरे को देखती रही, और मैं बगल में खड़ा था, मैंने देखा कि लगातार टप 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 उनके काले चश्मे से आंसू बह रहे हैं। बहुत देर तक खड़ी रही, फिर वो आई, फिर भूपेश को देखा उन्होंने, फिर आकर के खड़ी हो गई कमांडर राजेश्वर राव, कमांडर एन के कृष्णन, कमांडर इंद्रदीप सिंह और दूसरे तमाम लोगों से, मदन लाल खुराना जी भी वहाँ मौजूद थे, एम फारूकी साहब थे, उन सबसे बड़ी देर तक बात करती नहीं।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
आप रेहान फजल की विवेचना कल सुबह विश्व भारती में 8 बजे दोबारा सुन सकते हैं। और अब मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार बीएसएफ के आईजी राकेश कुमार ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान की ओर से फायरिंग के बाद बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 8 रेंजर्स मारे गए और साथ ही एक चरमपंथी मारा गया और एक घायल भी हुआ है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी तृप्ति श्रीवास्तव। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।